दूसरा पारा आयत नंबर 153 से 153। पीछे हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने किबले की तब्दीली का हुक्म दिया और आखिर में कह दिया फ़स्कुरून ही अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून। ये अल्लाह सुब्हानहु ताला का एक वादा है। अल्लाह ताला ने अपने ऊपर कुछ चीज़ों को मुकर्रर कर लिया, हालांकि अल्लाह ताला को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। और हकीकत है कि मेरी ज़िंदगी जितनी अल्लाह ताला की याद और उसके ज़िक्र में गुजरेगी, उतना ही ज़्यादा मुझे अल्लाह ताला की मोहब्बत भी मिलेगी। हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात बड़ी, बंदा छोटा है, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में एक बंदे को अपने बिल्कुल बराबर इस तरह से खड़ा कर दिया कि जैसा तुम मेरे साथ मामला करोगे वैसा ही होगा। फ़स्कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून, बस तुम मुझे याद रखो, मैं तुमको याद रखूँगा। जिसको तो अल्लाह से मोहब्बत है वो तो सुन के खुश हो जाएगा, और जिसको अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं वो कहेगा हु केयर्स, नहीं तो ना सही। याद रखिए, दुनिया में जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत नहीं करते ना, और अल्लाह की पुकार लब्बैक अल्लाहु लब्बैक उस पर नहीं कहते, हैया अलस सलाह और हैया अलल फलाह के ऊपर बात नहीं करते, तो उनको इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ताला उनको याद रखे। लेकिन हकीकत है कि जो शख्स अल्लाह ताला को याद करेगा, अल्लाह ताला को हर मामले में याद रखे। हमारे यहाँ जिक्र के साथ एक अजीब व गरीब मन घड़त तरीके आ चुके हैं। दिल दिमाग कहीं और होता है, ज़ुबान से हम अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हैं या कभी कुछ और कहते हैं, तो जिक्र जो याद है, आप किसी को कहते हैं मैं आपको याद कर रही थी, अभी आपका जिक्र खैर हो रहा था, तो क्या हम उस वक्त तस्बीह हाथ में लेकर उसका नाम बार बार पढ़ रहे होते हैं? नहीं, हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं, हम उसके साथ एक अच्छी याद रख रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला को हर हाल में याद रखना, हर वक्त उसके साथ ताल्लुक़ रखना। इसके बाद अब आगे से उम्मत मुस्लिमा पर अमल करने के सब्र की बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र वस्सला इन्नल्लाहा मअ सबिरीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की बात यहाँ क्यों आई? असल में जब भी कोई एक इंसान अल्लाह के हुक्मों पर चलना चाहेगा तो उसके साथ ही उसको यकीनन इस चीज़ की मुखालफत सहनी पड़ेगी जो लोग उसको लेकर जाएंगे। कभी भी अल्लाह के दीन पर अमल करते वक्त लोग आपसे नाराज़ हों तो आप इस आयत को ज़रूर याद कर लीजिए कि जब अल्लाह की तरफ से कोई मुश्किल आती है तो एक इंसान को उसके ऊपर कितना जमने की ज़रूरत है। और सब्र क्या होता है? हमारे यहाँ सब्र कमज़ोर लोगों की बात कही जाती है, बुज़दिल लोग, मायूस लोग, अच्छा भी मैं सब्र करती हूँ। हालाँकि सब्र बहुत हौसले वाली चीज़ है, कमज़ोर लोग सब्र नहीं कर सकते, बहादुर लोग सब्र करते हैं। सब्र क्या होता है कि दिल को मायूसी से और ज़ुबान को शिकवे शिकायत से बचाना। और यहाँ अल्लाह के दीन की दावत का सब्र है। उम्मत मुस्लिमा उम्मत वसत बनने के तकाजे जब पूरे करेगी तो सब्र आएगा। उस रास्ते में मुश्किलात तो ज़रूर आएंगी। याद रखिए कि अल्लाह के रास्ते में मुश्किलात का आना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने आपके साथ सौदा कर लिया। क्योंकि जब भी कोई काम किया जाता है उसके करने के रास्ते में कुछ मुश्किलात तो आती हैं। जिस तरह अल्लाह ताला का पुख्ता वादा ईमान वालों के साथ अपनी मदद का है, इसी तरह आजमाइशों का भी है। और हकीकत यह है कि जन्नत इतनी कीमती चीज़ है कि हर एक को दी नहीं जा सकती। लेकिन जिनके दिलों में निफाक होता है वो क्या सोचते हैं कि वो मुश्किलात में सहे बग़ैर, बात किए बग़ैर अल्लाह ताला को राज़ी कर लेंगे। फरमाया नहीं वला तकूलु लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात, और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाए इनको मुर्दाना कहो, ऐसे लोग तो हकीकत में ज़िंदा हैं। क्यों? क्योंकि जिस मकसद पर उन्होंने जान दी वो मकसद अभी ज़िंदा है। याद रखिए, किसी शहीद के दुनिया से जाने के साथ लोगों को इस बात का भी यकीन हो जाता है कि इसका मकसद इतना बड़ा था कि जिसकी खातिर इसने जान दी। एक इंसान की ज़िंदगी में जितना बड़ा मकसद होगा ना, उतनी खूबसूरत उसकी शख्सियत होगी। इस आयत का ये नहीं मतलब जो बाज़ लोगों को गलती लगी कि शहादा ज़िंदा होते हैं और देखो वो तो शहीद हैं और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं। अगर आप देखें साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी तो कह दिया ना, बल्ला तशरून, तुम इसका शऊर नहीं रखते। तो मुर्दों से जाकर या जो शहीद है उनसे जाकर दुआएं मांगना या उनके सामने अपनी हाजात रखना ये सही नहीं है, बल्कि इनकी ज़िंदगी कौन सी होती है? आखरत के एतबार से। हदीस में आता है कि शहीद को अल्लाह ताला दुनिया में से जाने के फौरन बाद जन्नत में उसका ठिकाना दिखा देते हैं, उसकी रूह जो है वो सब्ज़ रंग के परिंदों में ढल जाती है। और याद रखिए कि शहीद होने का शौक़ तो सबको होता है, लेकिन असल में शहीद कौन होगा? जिसकी ज़िंदगी शहादत हक के तकाजे पूरे करते हुए गुजरेगी। जिस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह के दीन को फैलाने और लोगों को अल्लाह से जोड़ने में सर्फ कर दी, उसको अल्लाह ताला शहादत की मौत देगा, चाहे वो अपने घर में चला जाए, चाहे वो वहाँ आए। हाँ, लेकिन याद रखो, वलनब्लुवन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जुई वनक्सिम मिनल अमवाल, اور ہم تمہیں ضرور ہی آزمائیں گے، کس چیز سے؟ خوف و خطر سے، فاقہ کشی سے، اور جان اور مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے سے۔ ہم ان میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ہاں لیکن الذین اذا اصابت مصیبت، ان حالات میں جو لوگ صبر کریں گے اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں گے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی کہ اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں۔ کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں مشکلات تو آئیں گی۔ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، آپ کے صحابہ بھی تھے، آپ نے ایک چوکٹا ڈالا، ایسے چکور قسم کا ایک خط کھینچا، پھر اس کے بیچ میں ایک نقطہ لگا کر ایک لائن کھینچی اور اس کو اس پہ ختم کر دیا، پھر بیچ میں اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لائنیں کھینچ دی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کے سکھانے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ آپ بعض دفعہ اس طرح کے فگرس کے ساتھ سکھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مومن کی زندگی ہے، یہ اس کی چار دیواری جو ہے یہ اس کی موت ہے، اور بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی لائنیں، کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے، ساری زندگی اس کو مختلف قسم کی تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ ایک سے بچا، بیماری آ گئی، تکلیف آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، یہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کی راحت دے دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ مصائب خمسہ ہیں۔ آپ میں کبھی بے صبرے نہ ہوں، جب میں اور آپ بول لیتے ہیں نا تو ہم پھر اپنا صبر توڑ دیتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ مصیبت ڈالی خوش ہو کے لیجئے، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، ہمیں اس کے لیے کھانا پکانا پڑتا ہے، تو کیا ہم روتے؟ وہ گھر آنے والا شرمندہ ہوتا ہے، ہائے میری وجہ سے آپ کو اتنا کام کرنا پڑا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کے آنے کی خوشی اتنی ہے۔ پیاروں کی طرف سے جو غم یا تکلیفیں آتی ہیں نا، وہ بھی انسان کو خوش کر دیتی ہیں۔ میرے رب نے مجھے دیکھا کہ میں اس قابل ہوں، تبھی تو میں یہ بات کروں گی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ نے عورتوں سے چونکہ کام بہت سارے لینے ہوتے ہیں نا، تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ عورتوں کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ تو میرا آپ کا کیا کام ہے کہ اس پہ صبر کریں؟ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مالک تو ہمارے لیے آسانیاں کر دیں۔ اب صبر کی ایک چیز جو بہت ہی خوبصورت مثال تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا دی، وہ ایک عورت تھی جس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں آ گئی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا ارادہ کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ خوب قدردان ہے اور اس کا علم رکھنے والا ہے۔ حضرت حاجرہ کون تھی؟ وہ ایک سمبل ہے کس بات کا؟ کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش آئے تو انسان اللہ پر نظریں لگا دے۔ ہم سب نے ان کا واقعہ سنا ہوا ہے، بچپن سے سنتے آئے، لیکن آج بھی جب حج عمرے پہ جائیں اور صفا اور مروہ کے بیچ میں سعی کریں تو حضرت حاجرہ بہت یاد آتی ہیں۔ یہ بی بی حاجرہ کا صبر تھا۔ بعض دفعہ جب ہم دین کے کام کی دعوت دیں کسی کو تو عورتیں کہتی ہیں کہ ہم کیوں کریں یہ کام؟ تو یہاں آج مثال اور آیت کا نمبر نوٹ کر کے جائیے گا کہ بی بی حاجرہ کو اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے صبر کرنا پڑا۔ اپنا گھر، اپنا بچہ، اپنا شوہر تینوں جدا ہو گئے، اس طرح سے ایک معصوم بچے کے ساتھ ایک عورت ادھر آئی تاکہ خانہ کعبہ کی جگہ آباد ہو اور وہاں کل اللہ کا گھر بنے گا۔ آج میرا آپ کا بھی یہی کام ہے۔ اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آپ کے شوہروں کا سایہ سلامت رکھے۔ لیکن یاد رکھیں، انہی گھروں میں، انہی بچوں میں اور انہی شوہروں میں ہم نے اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، شہادت حق کا کام کرنا ہے، اور اس کے بیچ میں جو چھوٹی موٹی مشکل آ جائے کبھی کسی سے نہ ذکر کریں۔ یاد رکھیے، آپ کسی کی خاطر کو تکلیف سہیں نا کبھی نہیں اس کو کہتے۔ مثلا مہمان آئے اور آپ اس کو کہیں تھک گئی، صبح سے بیٹھی نہیں، کمر ٹوٹ گئی، کھائے یہ ہو گیا، تو وہ کہے گا آپ کو میں نے مشکل میں ڈال دیا۔ ہو سکتا ہے ہم مہمان کے سامنے تو بہت اچھے بن کے اس سے باتیں کریں لیکن پیچھے سے ہم اس کے بارے میں برا سوچیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جب مہمان کو پتہ چل جائے کہ ہم اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے تو اس کو برا لگے گا نا۔ اللہ تعالیٰ کو تو دلوں کے حال بھی پتہ ہے۔ تو خاص طور پہ میرا آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی ہے، دین کے کام میں جب کوئی تکلیف آئے اس کا چرچا نہ کریں، اس کو کبھی کسی سے شیئر نہ کریں، اس کو اپنے اندر لے جائیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ غبارہ ہوتا ہے نا، تو جب ہوا گیس اس کے اندر ہوتی ہے نا تو وہ اوپر اٹھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے۔ یہ جو آپ کے اندر آپ کا پیشنس رہے گا نا، یہ آپ کی طاقت بنے گی، انرجی بنے گی، یہ پھر آپ کو اور اٹھائے گا۔ اور جو لوگ تھوڑی سی مصیبت پہ واہ ویلا کرتے ہیں نا، ان کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی ہے، پھر اللہ ان کو اونچے درجوں پہ نہیں لے جاتا، پھر اللہ ان سے بڑے کام نہیں لیتا۔ اور چند باتیں ذرا سوچیے، اگر بی بی حاجرہ کی جگہ میں ہوتی اور حضرت ابراہیم کی جگہ میرے شوہر ہوتے اور ہمارا بڑھاپے کا بچہ ہوتا، इतनी दुआओं से मांगा हुआ बच्चा और अल्लाह ताला ये हुक्म दे देते तो हमारा क्या रवैया होता। हम अपने बच्चे और घरों के नाम पर बहुत दफ़ा अपोलोजेटिक हो जाते हैं, हम बहुत कुछ कहने लगते हैं, तो ये चीज़ अल्लाह ने उस जज्बे की इतनी कदर की। आप कह लीजिए कि ममता के जज्बों को खराज तहसीन पेश किया, सेलिब्रेशन ऑफ मदरहुड कि क़्यामत तक के मर्दों को उन कदमों पर चला दिया। और सफ़ा और मरवा के बीच में जो सही की जाती वो इस चीज़ का एक सिंबल है कि वहाँ बीबी हाजरा इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए नहीं दौड़ रही थी, वो एक उम्मत की प्यास थी। तब तक इंसानियत खुश्क हो चुकी थी, हज़रत ईसा को आए हुए कई साल हो चुके, हज़रत शुएब आखिरी नबी थे जो अरब में आए। अल्लाह ने एक नई उम्मत तैयार करनी थी और इस्माइल नाम के छोटे से बच्चे से ये कुर्बानी ली कि उसकी एड़ियों की रगड़ से अगर अल्लाह ने वहाँ जमजम का चश्मा जगा दिया तो असल में वो एक दीन की तड़प थी। तो दीन के मामले में याद रखे कभी कभी बड़ी बातें भी करनी पड़ती हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फमन तत्वा, जो खुशी से करेगा अल्लाह को अच्छा लगेगा। फराज से आगे बढ़कर जीने का अज़म कीजिए। दीन के मामले में रूखी सूखी नेकियों पे क्यों रहें? क्या हम रूखी सूखी खाते हैं रोज़? क्या हम सिर्फ मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं? नहीं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम दीन के मामले में थोड़ी सी नेकी पे कहते हैं इट्स ओके। अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं, बड़ी नेकियां करने वाले बड़ी मंजिलों के जो राही होते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों में नहीं उलझते। तो मैंने आपने भी अपने रास्ते की हर रुकावट को दूर करना है जो मुझे अल्लाह के रास्ते में बढ़ने से रोकती है, और साथ साथ दुआ किया करें रब्बी यस्सिर, ऐ मालिक आसान कर दे। उसके आसान किए बगैर कोई काम आसान नहीं होता, चाहे एक इंसान तनहा हो, चाहे बच्चों वाला हो, चाहे फैमिली के साथ हो। और ये भी याद रखिएगा कि आप जितने मुश्किल हालात में अल्लाह को राज़ी करेंगी उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपके ऊपर अपनी मेहरबानियाँ करेगा। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अन्ज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन तालीमात और हिदायत को छुपाते हैं हालांकि हम इन्हें सब इंसानों की रहनुमाई के लिए अपनी किताब में बयान कर चुके हैं, यकीन जानो कि अल्लाह भी इन पर लानत करता है और तमाम लानत करने वाले इन पर लानत भेजते हैं। अलबत्ता जो इस रविश से बाज आ जाएं और अपने तर्ज अमल की इसलाह कर लें और जो कुछ वो छुपाते थे उसे बयान करने लगे, इनको मैं माफ़ कर दूंगा क्योंकि मैं बड़ा दरगुजर करने वाला और अहम करने वाला हूँ। यहाँ देखिए कि अल्लाह के दीन की आयतों को छुपाना, इसको कितमाने हक कहते हैं। जब उलमा दीन को छुपाने लगें तो लोग ख्वाहिश परस्त हो जाते हैं। लिख लीजिए, जब दीन वाले सच्चे दीन को छुपाते हैं तो लोग ख्वाहिशों के पीछे चल पड़ते हैं। बस लोग कहते हैं इल्म हासिल ना करो ताकि फिर अमल ना करना पड़े, तो ला इल्म रहना भी दीन को छुपाना है। आज आप और मैं देखिए कि हम दुनिया की क्या क्या तालीमात लेते हैं, 10, 20, 25 साल तक पढ़ते हैं फिर किसी प्रोफेशन पे पहुंचते हैं। हमने क्या किया? इतनी स्किल्स हैं हमारे पास अल्लाह की इतनी रहमतें हैं कि हम कुरान नहीं पढ़ सकते। लोग कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता, करें क्या? अगर औरतों के पास वक्त नहीं है तो बताइए फिर बाज़ार क्यों आबाद है, फिर मॉल्स क्यों आबाद है? आज हम कहते हैं हमें समझ नहीं आता, क्या करें, या बैठते तो हैं आके समझ कोई नहीं आता। देखिए औरतें तो एक आंख का इशारा समझ जाती हैं, कोई आपको देख के ज़रा सा मुस्कुराए हो भी आपके ससुराल में से, आप उसके एक मुस्कुराहट के पीछे एक पूरा अफसाना घड़ लेते हैं। क्यों मुस्कुराई, उसके पीछे क्या था, ये मुझे देख के हंसी, ये मुझे देख के आंख मारी। औरतें तो इतनी इंटेलिजेंट है, तो अल्लाह की किताब तो बड़ी आसान है। हम दुआ करते हैं कि इस छुपाए हुए इल्म को आम करने वाले बन जाएं और अल्लाह ताला हमें इसके लिए फिक्र लगा दे, सोच लगा दे, और अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे कि हम इस किताब को सीख कर दुनिया से जाएँ। दुआ करें अपने लिए भी, मैं भी अपने लिए करती हूँ कि मालिक मुझे इस किताब से दिन ब दिन और उन्स दे और मुझे इसका इल्म दे, मुझे इस पे अमल की तौफीक अता फरमा, वरना क्या है जो लोग इससे महरूम रह गए। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार, जिन लोगों ने कुफर का रवैया अख्तियार किया और कुफर की हालत में जान दे दी, इन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। इसी लानत जदगी की हालत में वो हमेशा रहेंगे, ना इनकी सज़ा में कुछ कमी होगी और न वो ढील दिए जाएंगे। कितना बुरा अंजाम होने वाला है उन लोगों का जो हक़ को छुपाते हैं। आप याद रखिए कि जिसने यहाँ छोटा भी जुर्म किया ना, क़यामत के दिन वो बहुत बड़ा होगा। जैसे मेरे सामने एक छोटी सी स्क्रीन है, आपके सामने एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, क़यामत के दिन प्रोजेक्टर्स होंगे, बड़ी बड़ी स्क्रीनें होंगी। कुल्ला इंसान नलज़म ना हो तो फ़ी नुक़ी, फिर उधर कहा जाएगा इकरा किताबक, खोलो पढ़ो अपनी किताब। तो आज मैं आप कोई भी चीज़ छुपा लेंगे लोगों से कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको हाईलाइट करेंगे। छोटा सा धब्बा होता है ना, जब उसको आप मैग्नीफाइंग करके देखेंगे तो वो बहुत बड़ा होगा। और इस हिकायत से ये भी पता चलता है कि जो कुरान की नेमत से दूर है वो अल्लाह की रहमत से दूर है। अल्लाह ताला एकदम किसी पर लानत नहीं करता, लानत कहते ही अरबी में रहमत से दूरी को है। किसके ऊपर करता है? जब अल्लाह बहुत से मौके दे اور لوگ ان مواقع کا استعمال نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اور دور کرنے لگتا ہے. اب اس کے بعد اللہ اپنا تعارف کرواتے ہیں مجھے اور آپ کو کہ دیکھو میں کون ہوں, تم میرے بارے میں بدگمان ہو نہیں. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے, اور آپ اس ایک آیت کو پڑھ کر ذرا اللہ تعالیٰ کے وجود پہ خیال کریے, بلکہ دو آیتیں اکٹھی پڑھیں گے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا رب تمہارا اللہ ہی کی خدا ہے, اس رحمٰن الرحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمان اور زمین کی ساخت میں, رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بدانے میں, ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور پھر اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے, ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے بے شمار نشانیاں. اس آیت کو آیت الآیات کہتے ہیں. اس ایک کے اندر, یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس کے اندر ایک آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیاں ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم نے مجھے نہیں پہچانا, تم ابھی تک سمجھتے ہو کہ میں نہیں ہوں. کبھی سوچو یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے, اور آپ دیکھیے کہ ایک کتاب آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اور ایک کتاب کائنات کی صورت میں باہر کھلی ہے. جب یہاں سے واپس جائیں گے ذرا ان ساری نشانیوں کو ڈھونڈیے گا, آپ کو آسمان بھی دکھے گا, بادل بھی دکھیں گے, پہاڑ بھی دکھیں گے, آپ کو سبز رنگ کی زمین بھی دکھے گی. تو جو ذات اتنے کام کرنے والی, جس نے اتنا کچھ کر دیا, کیا میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے قدردان بنیں؟ آج دنیا میں کوئی تھوڑا سا ہمیں کچھ دے دے ہم کہتے ہیں تھینک یو. آپ لوگ کیا کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں بولیں سب, حق بولتے ہیں نا. کوئی پانی کا گلا, او تھینک یو, ایکسکیوز می. لیکن اللہ کچھ دے تو کہتے ہیں دینا نہیں تھا, بھوکا مارتا میں. کبھی اپنی زبان سے نہ شکری کے الفاظ نہ بولیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے کبھی بے تکلف نہ ہو اس رنگ میں, اس طرح کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہ جوڑیے کہ جس میں آپ شکوے شکایتیں کرنے لگ جائیں. اللہ کے ساتھ جب بندے کا تعلق جڑتا ہے اس کو اپنی زندگی خوبصورت لگتی ہے. اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں. دعا کیجیے اللہ ہمیں ان میں نہ کرے جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں, اور ان کے ایسے کرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ذرا اس پہ چند لمحوں کے لیے اپنا جائزہ تو لے, کیا میں اللہ سے محبت کرتی ہوں؟ کتنی محبت ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے محبت بندے کی معراج ہے. یہ میں اور آپ جو پڑھ رہے ہیں نا, اور فجر پڑھی, ظہر پڑھی, عصر پڑھیں گے, اور ہم روزے رکھیں گے, اور ہم عمرے پہ جائیں گے, اور ہم حج کریں گے, اور ہم بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے, پھر ہم زکوٰۃ دیں گے, پھر ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے, پھر ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, ان سب کے پیچھے لکھ لیجیے حب الہی. ایک ایمان والا ساری زندگی ایسے نیکیوں کو ڈھونڈتا ہے, تڑپتا ہے کہ ان نیکیوں کو پا کر مجھے اپنے رب کو خوش کرنا ہے, رب کو راضی کرنا ہے. تو محبت جو ہے نا, یہ بہت بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے, جذب محرک ہے. کچھ کام محبت کی وجہ سے آسان ہو جاتے ہیں. بس آپ کو پیاس لگی ہے نا, پانی کی محبت آپ کو بستر سے اٹھائے گی کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے, بستر پہ آرام کر رہے ہیں, لیکن آپ کو وہ بھوک جو ہے نا اٹھاتی ہے, آپ جا کے کھانا بنانے لگ جاتے ہیں. بچوں کی محبت آپ کو کاموں پہ مائل کرتی ہے نا. تو اللہ سے محبت مانگیے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. لیکن اللہ کی محبت بندے کو اطاعت پہ مائل کرتی ہے, اللہ کی محبت انسان کو پابند کرتی ہے. اپنی خوشی سے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے راستے میں بھاگتا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب ایک رب سے آپ محبت کریں گے نا, تو اللہ سب کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. وہ خوبصورت حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہوتی ہے تو جبرائیل کو کہتے ہیں فلاں سے میں محبت کرتا ہوں, آپ بھی کیجئے. پھر فرشتے آسمانوں کے, اور پھر زمین کے فرشتے, اور آسمان و زمین میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے. اللہ الحی ہے, اور الحی کی محبت بندے کو حیات دیتی ہے. اور یقین کیجئے قرآن آپ کی زندگی کب بنے گا؟ جب آپ الحی سے محبت کریں گے. اللہ کی محبت کے تابع کر دیں ہر محبت کو. سورۃ توبہ میں ہم نو محبتیں پڑھیں گے. जिनसे हम दुनिया में प्यार करते हैं, लेकिन इन सब की मोहब्बतों के ऊपर अल्लाह की मोहब्बत। ये नहीं कहा दूसरों से मोहब्बत ना करो, लेकिन सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो। और याद रखिए, जब अल्लाह की मोहब्बत सामने आती है ना, फिर हम मजबूर नहीं रहेंगे, फिर हम बेबस नहीं रहेंगे। जब हम अल्लाह से बढ़कर किसी को प्यार करते हैं ना, तो एक लफ्ज़ याद रखिए हमारी ज़िंदगी में शामिल होगा, और वो है दुख। औलाद की मोहब्बत दुख देती है, शौहर की मोहब्बत दुख देती है, भाई बहनों की मोहब्बत दुख देती है। क्यों भला? क्योंकि हम उनके गम में पड़े रहते हैं, हाय बच्चे को कुछ ना हो जाए, हाय माँ बाप ठीक हों, हाय भाई ठीक हैं, अल्लाह हाय भाइयों के बच्चे भी ठीक हैं, सारा दिन ही गमों में नहीं रहते। अल्लाह की मोहब्बत दिल को खोल देती है। और जब ज़िंदगी में मादे की मोहब्बत आती है, मुर्दा पत्थरों की मोहब्बत दिल को मुर्दा करती है। डायमंड कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो जाए, है तो पत्थर। क्रिस्टल कितना ही हसीन क्यों ना हो, वो मोहब्बत वो क्या है तो पत्थर है। तो मुझे आपको इस चीज़ की कोशिश करनी है, एक रब की बन जाए। याद रखिए, बंदगी में हुर्रियत है, अल्लाह के बन के आप आज़ाद हैं। लिब्रेशन का एहसास होगा, आपको महसूस होगा। आज भी आप अपने आप को देख कर देखिए कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगियाँ कितनी खूबसूरत थी। लेकिन एक अफसोस की बात आपको बताऊँ, इस एक आयत में इतनी खूबियाँ हैं, लेकिन आज साइंस की किताबों में लफ्ज़ गॉड तक निकाल दिया गया, रिप्लेस करके उसको नेचर कह दिया गया। आज आप जितना फिक्शन देखेंगे, लोग अमूमन कहते हैं गॉड, मदर नेचर, ये तो नेचर में है, फितरत ये करेगी, कुदरत आपके लिए ये करेगी। यानी लफ्ज़ गॉड को पहले गौश का, अब गौश को भी निकाल दिया। ये खूबसूरत मुहावरे हैं जो मुख्तलिफ़ ज़बानों में लोग बोलते हैं, यानी लोग अल्लाह का नाम तक नहीं सुनना चाहते। अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी मोहब्बत दे दे। और जब आप और मैं अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करेंगे ना, तो फिर माँ की मोहब्बत और बाप की मोहब्बत और बाकी सारी मोहब्बतें दूसरी तरफ होती हैं। इसलिए अल्लाह ताला मुझे आपको इस मोहब्बत की तौफीक दे, और अपने आप को हमेशा इस चीज़ की दावत दिया करें कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ। आप देखिए, माँ 9 महीने पेट में रखती है ना, अल्लाह ताला तो सारी ज़िंदगी खिलाता है। आप कहते हैं औलाद को इसलिए पालो कि ये बड़े होके हमें खिलाएंगे, खिलाते, लेकिन अल्लाह तो आपको बुढ़ापे में भी खिलाता है। आपके दांत नहीं थे तब भी दूध खिलाया, बुढ़ापे में आपके दांत फिर नहीं रहेंगे, अल्लाह फिर भी आपको खिलाएगा पिलाएगा। वक्त के साथ आपका टेस्ट बदल जाता है। जब दांत नहीं रहते तो सख्त चीज़ों की मोहब्बत दिल से निकाल देता है। रात भर बच्चे जगाते हैं, सुबह उठकर हम उनके मुँह चूमते हैं। बच्चे का हाथ लग जाए माँ के मुँह पे, चोट पड़ती है, लेकिन माँ मोहब्बत से उसको पकड़ती है। कभी देखा, छोटे छोटे बच्चों के मुँह में माएँ नवाले डालती हैं, वो वहीं से दांत काट लेते हैं। हम प्यार से उनके दांत चूमते हैं, हाय मेरे बच्चे ने मेरी उंगली काट ली, हाय खुश हो जाओ इसके दांत निकल आए हैं। हमें मोहब्बत करनी आती है, ऐसा तो नहीं हमें नहीं आता। ये मोहब्बतें ही तो हैं जो सुबह उठाती हैं हस्बैंड्स को, और सारा सारा दिन मारे मारे फिरते हैं बेचारे। कितनी मेहनत करते हैं, क्या खाते हैं, 2 रोटियाँ, 1 सालन, सादे से कपड़े। क्या ज़रूरत है एक मर्द की? मेरा ख्याल है कि अगर एक मर्द का ज़ाती खर्चा देखा जाए, 10% भी नहीं है उसकी अपनी ज़ात पर। अकेले मर्द तो वैसे ही दोस्तों के साथ रह लेते हैं। घर का बिल, बिजली का बिल, गाड़ी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब बच्चे और बीवी होते हैं। ये मोहब्बतों के तकाजे हैं, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कोई तकाजा नहीं है? आप कहते हैं, नहीं, हम इन दुनिया की मोहब्बतों में खोकर अल्लाह को खुश कर नहीं सकते। हालांकि आपको पता है, आप कितनी हसीन क्यों ना हो जाएं, अगर अल्लाह आपके शौहर के दिल में मोहब्बत ना डाले, नहीं डालेगा। कई हुस्न वाली रोतियाँ देखीं, और कई ऐसी हैं बेचारी जो आम वाजबी शक्ल के शौहरों के दिल की रानी है, क्योंकि शौहरों के दिल में मोहब्बत अल्लाह डालता है। तो जिसकी नज़रें अल्लाह पे डलेंगी, याद रखिए अल्लाह ताला उसके साथ बेहतरीन तरीके से मामला करेंगे। और अल्लाह ताला अच्छे तरीके से मुझे आपको ये दावत देने के बाद फरमाते हैं कि जो लोग इन्हीं दुनिया की चीज़ों में खोके रह गए, वलौ यरल्लज़ीना, काश जो कुछ है आपको सामने देख कर इनको सोचने वाला है, आज इन ज़ालिमों को सूझ जाए कि सारी ताकतें और सारे इख्तियारात अल्लाह ही के कब्ज़े में हैं। और ये कि अल्लाह ताला सज़ा देने में भी बहुत सख्त है, जब वो सज़ा देगा इस वक्त कैफियत ये होगी। थोड़ा सा इमेजिनेशन में एक लाइए जगह, कुछ लोग बैठे हैं और किसी बुज़ुर्ग के सामने माथे टेक रहे हैं, सजदे कर रहे हैं, रुकू कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि बाबा जी वहाँ हमारी मदद करना, बाबा जी वहाँ जाके भूल ना जाना। और कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो दुनिया में लोगों के ईमान को लूटते हैं, ये कहकर बस तुम हमारे आगे, हम अल्लाह के आगे। लोग पंजाबी में कहते, साड़ी एना आगे, एना दी रब अगे, साड़ी सुनदा नहीं तो एना दी मोड़दा नहीं। शिर्क का एक बहुत मारूफ तरीका क्या है? शख्सियत परस्ती। ये आयत उसका रद्द है। جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کی، ان کی تصویروں کو پوچھنے لگے، ان کی قبروں پہ ماتھے دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کاش ان کو آج پتہ چل جائے اس بات کا. اب ذرا ان آیتوں پہ غور کیجئے گا، کتنا سخت وقت ہوگا اس وقت ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسروں سے مانگتے رہ گئے. کیا کہیں گے؟ دوبارہ یہاں سے پڑھوں گی شروع سے. آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. یوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. کیسا مشکل وقت ہوگا. وہ ایک محاورہ ہے، مجھے صحیح نہیں آتا، کہ جن پتوں پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے. آپ ذرا سوچئے، شرک کتنی بڑی قباحت ہے کہ انسان کی نیکیوں کو چاٹ جاتی ہے. تو جب بھی کسی سے کچھ بھی مانگنے اور کسی کو اللہ کو بیس میں سے کٹ ڈاؤن کر کے کچھ کہنے کا موقع آئے تو اس آیت کو یاد کر لیں. اس دن تو وہ خود پکڑے ہوں گے، آگے بہت موضوع آئے گا. یہ وہ کہیں گے اگر ہم بچ گئے تو تمہیں بھی بچا لیں گے، ہم تو خود غلط رستوں پہ تھے، تمہیں کیسے لاتے. تو یاد رکھیے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا یہ اللہ کی ناقدری ہے، نہ شکری ہے. اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر انسان دنیا کی چیزوں پہ آ جائے. اب اس کے آگے اگر آپ کو آیتوں کے نمبر یاد ہیں جو شروع میں بتائے، تو اب اگلا حصہ حلال اور حرام کے بارے میں، اس کو اکٹھا پڑھ کے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو زمین میں پاک اور حلال ہے ان کو کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو، تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. آبا پرستی، خاندان کا نام لے کر، باپ دادا کا نام لے کر اس طریقے سے یہ لوگ دنیا میں جیتے ہیں کہ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. یہ ساری آیات مکہ کے ان لوگوں کے اوپر کمنٹ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے باوجود بت پرست ہو گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ باپ دادا پرستی، بھیڑ چال. دیکھیے، جب کوئی عقل نہیں استعمال کرتا نا، تو کوئی جدھر بھی لے جائے گا وہ چل پڑے گا. ایک کسی کا جوک سنا کہ ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ میتھ کا سوال ہے تو جواب دو. کہا کہ 100 بھیڑیں کسی پہاڑی پہ جا رہی تھیں، پھر اس میں سے ایک بھیڑ نیچے گر گئی، تو یہ بتاؤ کہ پیچھے کتنی رہ گئیں؟ تو بچے نے کہا کہ ایک بھی نہیں رہ گئی. تو ٹیچر نے کہا کہ تم فیل ہو گئے، تمہیں حساب نہیں آتا. کہنے لگا کہ مجھے حساب نہیں آتا پر آپ بھیڑوں کو نہیں جانتی. کیوں؟ جو ہی ایک بھیڑ نیچے گرے گی نا، بھیڑ یعنی شیپ، تو ساری اس کے پیچھے چلیں گی. آپ کو پتا ہوگی یہ بات کہ بھیڑیں اور یہ جو بکریاں پہاڑوں پہ سفر کرتی ہیں نا، کھاتی ہیں پیتی ہیں، کسی ایک کا واقعی پاؤں پھسلتا ہے تو باقی سب اس کے پیچھے گرتی ہیں. اسی سے پھر بھیڑ چال کا محاورہ. آج آپ اپنے اور ارد گرد دیکھ لیجئے، آپ کو بہت سارے لوگ یہی بھیڑ چال کرتے دکھیں گے. ان کی پوری زندگی بھیڑ چال پہ. کبھی نہیں سوچتے تیل کیا ہوتا ہے، کبھی نہیں سوچتے مائیاں کیا ہوتی ہیں، کبھی نہیں سوچتے پیلے جوڑے کی کیا حقیقت ہے، کبھی نہیں سوچتے گود بھرائی کہاں سے شروع ہوئی، کبھی نہیں سوچتے کہ شادی کی جو بےتکی رسمیں یہ کہاں سے آتی ہیں. آنکھیں کان لپیٹ کر چل پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عقل استعمال کرو. آپ کو مجھے اس دنیا میں باپ دادا کے نام پہ نہیں رہنا. آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں وہی فرنیچر ہے جو ہماری دادی کے گھر میں تھا، یا ہمارے دادا کے وقت کی چیزیں ہیں؟ کیا ہم وہی کپڑے پہنتے ہیں جو ہماری نانی پہنتی تھی؟ ادھر تو ہم کہتے ہیں یہ پرانے ہیں، 6 مہینے پرانا کپڑا دیکھے کہتے ہیں یہ اولڈ فیشنڈ ہے. نیکیوں کو کیوں سنبھالا ہوا ہے؟ وجہ کہ بھیڑ چال سمجھ نہیں آتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روکا. عربوں نے بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا، جو हलाल थी, अल्लाह ताला ने कहा इसको छोड़ दो। हाँ करो क्या, पीछे या अय्युहन्नास था तो आगे क्या आ गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात, ए लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही की बंदगी करने वाले हो तो जो पाक चीज़ें हमने तुमको बख्शी हैं इनको बेतकल्लुफ़ खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसे कायद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ लफ्ज़ कुलू खाओ अमर का सीगा है, यानी अल्लाह के हुक्म से खाना पीना अल्लाह ताला की इबादत है। खाओ, आम खाओ, चावल खाओ, रोटी खाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, हलाल तरीके से खाओ। हलाल दो तरह का होता है, एक होता है फ़ी नफ्सी ही, अपनी ज़ात से हलाल, एक होता है किसी सबब के साथ, सोर्स ऑफ इनकम तुम्हारा क्या है। खूब खाओ, अच्छा खाओ, नफ्स को आप देखिए कि जो चीज़ अच्छी लगती है उसको खा के शुक्र निकलेगा ना। गर्मियों की दोपहर में ठंडा पानी पीकर जो शुक्र निकलेगा वो गर्म पी के तो नहीं निकलेगा ना। तो ठंडा पानी पीना गुनाह नहीं है, सवाब है। आपका मनपसंद खाना आपके सामने आया, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए, स्माइल दीजिए और कहे थैंक यू अल्लाह। कोई एक थी तो उनको जज़ाक अल्लाह कहने की आदत बहुत थी, तो किसी ने उनके सामने खाना रखा, इतनी खुशी हो कहेंगे जज़ाक अल्लाह, अल्लाह अल्लाह आपको जज़ा हो, यानी अल्लाह ताला समझ गए आप, क्योंकि अल्लाह को ही कहने लग गए कि अल्लाह ताला आपको जज़ा मिले। लेकिन हकीकत यह है कि नशुक्री बुरी चीज़ है। जब हमारे बच्चों का मिजाज बिगड़ता है, क्योंकि यहाँ देखिए आज हमने अपने बच्चों को भी बिगाड़ दिया, किस रंग में, हमने उनकी इतनी मिन्नतें की, बस कहते हमारे पास कुछ है ही नहीं, क्या खाए, माँ कहती है पिज़्ज़ा खा लो, अच्छा जी, वो कहते नहीं पिज़्ज़ा तो रोज़ खाते हो, नहीं नहीं, अच्छा टाकोस खा लो, नहीं टाकोस नहीं तो फिर मैक्सिकन फूड खा लो, अच्छा ये नहीं है तो नूडल्स खा लो, और नूडल्स नहीं खाना चाह रहे तो बर्गर खा लो, और बर्गर नहीं आज पसंद तो आज तुमको साउथ इंडियन खाना खिला देते हैं, और वो नहीं पसंद तुम्हें तो फिर तुम जंक फूड ही खा लो, जो तुम्हारे शौक के काम है उनको खा लो, और जब कुछ नहीं होता तो कोई डाइट खा लो, जब बहुत वजन बढ़ जाता है तो डाइटिंग वाला फूड खाने लग जाते हैं, सैलड्स खाओ, अच्छा ये भी नहीं खाना तो टिफ़िन का खाना, और वो भी नहीं है तो सी फूड ले लो, कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन आप देखिए कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनको रोटी भी नहीं मिलती, जिनके नसीब में बेचारों के सूखी रोटियां भी नहीं हैं। कभी आपने शादियों के बाद में बचे खुचे खाने को फ़कीरों और गरीबों के बच्चों को खाते देखा, किस तरीके से आज हमारे मुल्कों में खाने का ज़िया है। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि आप खाना ज़ाया करें, डोंट वेस्ट योर फूड, एक कतरा भी खाने का बच जाए ना या तो खा लें या लपेट के रख दें बाद में खा लूँगी, ये आपकी अना भी तोड़ता है। आज आप देखिए कि हमारे बच्चे जो हैं वो इतने नाशुक्रे क्यों हो गए। माँ सैंडविच बनाती है ना तो पहले ब्रेड के किनारे काट देती है, क्यों, उसके दांत नहीं है, जिस दांत ने ब्रेड के क्रम्स या साइड्स नहीं चबानी उसके दांत रहेंगे। आपको तो डॉक्टर्स ने अब ये चीज़ कही कि जो बहुत नरम नरम गजाएं खाने लगते हैं ना तो उनके ये जो जॉस और दांतों के बीच में चर्बी आने लगती है, सख्त चीज़ खाते हैं ना तो हमारे दांतों की एक्सरसाइज होती है, जैसे नरम ज़मीन में कील डालें तो जितना ऊपर से कील को ठोकेंगे ना वो उसके अंदर जाएगा। तो आज ये चॉकलेटें खाकर इस तरह के काम करके बच्चों के दांत क्यों ख़राब हो रहे हैं। अपने बच्चों को ये दिखाइए, उनको समझाइए। बहुत सारे लोग हैं वो देखिए रोटी कचरों में से खाना ले रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं हैं उनके पास, उनकी जान कैसे बनी हुई है। तो मुझे आपको खाना ज़ाया नहीं करना, आज से नियत करें जितनी ज़रूरत है उतना पकाऊँगी, फालतू ना पकाए, दूसरे को दे दे, बचता ही है ना, थोड़ा सा बच सकता है। सारे बड़ी फैमिली है, नहीं पता किसी ने कम खा लिया किसी ने ज़्यादा, उसको किसी के साथ शेयर करते हैं, सोचे ये किसको अच्छा लगेगा खाना, अच्छा फलां दोस्त को उसको दे दो। पर हमारे नखरे भी तो बहुत है, लोग कहते हैं हमारे तो अपने घर में इतना खाना है, यकीन करें मैंने खुद देखा है फंक्शंस में जब खाना बचता है तो बाद लोग नहीं लेते, कहते हमारे अपने घर में बड़ा, वजह के घर भरे पड़े, फ्रिज तो पहले से भरी हुई है, कम पकाएं, थोड़ा बनाएं। इस साल के रमज़ान में ये गोल बनाएं कि मैंने एक दिन में एक तरह की चीज़ से ज़्यादा नहीं बनाना, और हफ्ते में से 7 दिन में एक दिन गोश्त पकेगा, एक दिन दाल पकेगी, एक दिन सब्ज़ी बनेगी, एक दिन चले खाली पास्ता बना दें, एक दिन फ़िश बना दें, फिर भी 2 दिन बाकी हैं उसमें आप कुछ और करें। ये जो रोज़ गोश्त, रोज़ चिकन, रोज़ पुलाव, मटर, ये आपकी मेरी सेहत के लिए भी ख़राब है। लेकिन आप देख लीजिए हम इस तरह के करके फिर जिस्म मोटा होता, फिर खाया ज़्यादा जाता है तो सोचा नहीं जाता। तो हेल्दी फूड खाएं और खूब अच्छा खाएं, लेकिन खूब अच्छे काम करें। गड़बड़ के खूब अच्छा खाते हैं, काम अच्छे नहीं करते। आपने बेहतरीन दावत खाई और ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो गए, ये है ना शुक्री। अल्लाह ताला मुझे आपको तौफीक दे कि हम अपने इन नेमतों की बेहतरीन कदर कर सकें। अब इसके बाद आयत 173 में 4 चीज़ों की हुरमत, मैंने शुरू में ज़िक्र किया था कि आदम पर तो एक चीज़ हराम थी ना जन्नत में, तो दीन इस्लाम में 4 चीज़ें, उसमें पहली दफ़ा जी आयत आ गई, इन्नमा हर्रमा अलैकुम, अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई पाबंदी तुम पर है तो वो ये है कि मुर्दार वो जानवर जो खुद से मर जाए, जिसको आप कहते हैं मरा व मुर्दार ही कहते हैं बेसिकली उर्दू में, यानी जिस जानवर को ज़िबा ना किया जाए, स्लॉटर ना किया जाए। इन सारे के कामात की डिटेल्स इंशाल्लाह सूरत मायदा में आएगी, तब तक थोड़ा सा आपका जहन भी पुख्ता हो चुका होगा। लेकिन वो जानवर जिसका गोश्त के अंदर ही खून रह जाए और उसकी रग ना काटी जाए, वो मुर्दार है, उसको नहीं खाना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ खून है। खून में से भी आप देखिए कलेजी और तिली, ये दो एग्जेम्पशंस हैं। कलेजी भी ऐसे में जमा हुआ खून होता है, ये खा सकते हैं। जिस वक्त ये आयतें उतरी थी, किसी को पता था कि कलेजी क्या है? आप कहते हैं कि जिगर बॉडी में ब्लड को क्लीन करता है, तो ये जो जिगर है ये असल में जमा हुआ खून ही होता है। तो जो लोग खाते हैं उनके जिस्म में खून की कमी दूर हो जाती है। फिर इसी तरह देखिए सुअर के गोश्त से परहेज़ करो। पिक के गोश्त से अल्लाह ताला ने मना कर दिया। पहली बात देखिए लव सुअर, मैंने कहा मेरी ज़ुबान तो नहीं नापाक हो गई? हम बचपन से क्या सुनते हैं, 40 दिन तक ज़ुबान नापाक होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, असल में हमारी एहतियात देखें ना, हराम चीज़ है उसको हाथ लगाया तो भी नापाकी, तो ज़ुबान पे आ गए तो हराम है। और बाकी चीज़ों को हम चाहे गालियाँ बोलें, बेतुकी बातें बोलें और फजूल बातें करें, गीबतें करें, हमें कभी गीबत के बाद एहसास हुआ कि ज़ुबान नापाक हो गई है? झूठ बोलने के बाद कभी फीलिंग आई? हालांकि हदीस में आता है कि जब कोई झूठ बोलता है ना तो रहमत का फरिश्ता एक मील दूर चला जाता है उस बू की वजह से। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से मना। अब सुअर के गोश्त को हराम क्यों किया, थोड़ा सा समझिएगा कि इस्लाम को कोई चिढ़ नहीं है सुअर से, या अल्लाह ताला को मैता को बुरा नहीं लगता। कोई भी चीज़ जिसका जिस्मानी तौर पे बैड इफ़ेक्ट हो या रूहानी तौर पे स्पिरिचुअली उसका इफ़ेक्ट बुरा हो, उसको अल्लाह सुबहाना ताला ने हराम करार दे दिया। ये तमाम चीज़ें जो ये हमारे जिस्म के निज़ाम को बिगाड़ देती हैं। और सुअर जो है ना, इसका इनसाइट इंसान से बहुत मिलता है। आज भी डॉक्टर्स बनते हैं जो लोग, तो पहले उसको पिक के ऊपर डिसेक्शन सिखाते हैं, बाद में फिर इंसान के पे लेके जाते हैं। इसके मुसाम नहीं होते, पोर्स नहीं होते, इसका पसीना जिस्म के अंदर रहता है। होमोसेक्सुअल है, ये वाहिद जानवर है जो अपनी फीमेल से दूसरे जानवरों से जिना करवाता है। फिर जो लोग ये खाएँगे ना उनमें वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। इसी तरह बदबूदार होता है, इसके ब्लड में इंतहाई स्मेल है, ख़ासतौर पर जिसकी चर्बी जिसको इंग्लिश में लॉट कहते हैं वो तो इंतहाई कोलेस्ट्रॉल से भरी होती है, वेन्स भर जाती हैं। और आप देखिए कि वेस्ट में जो लोग ये चीज़ें खाते हैं उनमें मोटापा कितना है, अजीबो गरीब जो बीमारियाँ उसमें ये चीज़ है। मुझे आपको ये सब बातें सुन के नहीं छोड़ना इसको, मेरा नहीं ख्याल, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में एक भी मुस्लिम नहीं देखा या सुना कि जो पिक का गोश्त खाए। लेकिन उसके साथ दूसरी चीज़ें भी एक ही आयत में आई हैं, गैर ज़बीहा खा लेंगे, झूठ बोलेंगे, शराब पी लेंगे, लेकिन सुअर के साथ कोई खूब चिड़ है हमारी, वजह क्या? शुरू से सुनते आ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसी चीज़ों से परहेज़ करो। और चौथी चीज़, कोई ऐसी चीज़ ना खाओ जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम लिया गया हो। जब अल्लाह ताला के नाम पर किसी चीज़ को ज़िबा किया जाता है तो वो हलाल है, लेकिन किसी चीज़ के ज़िबा करते वक्त कह देना ये फ़लाँ इंसान की खुशी के लिए या उसके चरणों में रख के काट रहा हूँ या उसके नाम पे कुर्बान कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है इंसान को उसकी तरफ ले जाती हैं कि ये चीज़ हराम हो जाती है। अल्लाह ताला कहते हैं हाँ, जो शख्स मजबूरी की हालत में वो इनमें से कोई चीज़ खा ले बगैर इसके कि वो कानून शिकनी का इरादा रखता हो या ज़रूरत की हद से तजावज़ करे, तो इस पर कोई गुनाह नहीं और अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हक ये कि जो लोग इन अहकामात को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए, नोट कीजिएगा, इन अहकामात के फ़ौरन बाद रियायत क्यों आ गई? क्योंकि ख्वाहिशों के पुजारी अक्सर ऐसी बातों को इधर उधर करवा देते हैं। वो ऐसा कोई दीनदार शख्स ढूंढ लेते हैं जो ये कह दे जायज़ है खा लो कुछ नहीं होता, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि और थोड़े से दुनियावी फ़ायदों पर इनको भेंट चढ़ाते हैं, वो दरअसल अपने पेट आग से भर रहे हैं। वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, ऐसे लोगों के साथ क्या होगा, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला इनसे हरगिज़ बात ना करेगा और ना ही इनको पाकीज़ा ठहराएगा और इनके लिए दर्दनाक सज़ा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले जलालत खरीदी और मग़फ़रत के बदले में अज़ाब मोल ले लिया। कैसा अजीब है इनका हौसला कि जहन्नुम का अज़ाब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ इस वजह से हुआ कि अल्लाह ने तो ठीक ठीक हक के मुताबिक किताब नाजिल की थी, मगर जिन लोगों ने किताब में इख्तलाफात निकाले वो अपने झगड़ों में हक से बहुत दूर निकल गए। देखिए अभी दूसरा पारा है, क्या खाओ क्या ना खाओ, क्या करो क्या ना करो, सब बता दिया। आज दुनिया में सब्र नहीं होता, लोग कहते टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, ये मेरे बच्चे का फेवरेट ब्रांड है मैकडोनल्ड, उसको अच्छा लगता है, उसको केंटकी चिकन बड़ा अच्छा लगता है, वो फिर क्या करें, फिर स्कूल में दूसरे बच्चे खाते हैं तो फिर हमारे बच्चे बेचारे आइसोलेटेड फील करते हैं, फिर ये तनख्वाह रह जाएंगे, एहसास कमतरी का शिकार हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फमस बरहुम अलन्नार, दुनिया में सब्र नहीं कर सके, यहाँ की बेसब्री वहाँ का सब्र बनेंगी, क्या फिर जहन्नुम की आग खाने वाले हो गए? अब देखिए थोड़ी देर का सब्र है ना, कोई कर ले, वहाँ के औकात 4 दिन का सब्र है, वहाँ का सब्र तो ख़त्म ना होने वाला सब्र है। तो इस तरह की तमाम चीज़ों पे अपने दिल दिमाग को खोल के रखने की ज़रूरत है।